अल्लाह ताला ने मादे को पैदा किया जिससे ये पूरी कायनात का वजूद है और जिसकी मुख्तलिफ सूरतें बदलती हैं कि एक सूरत बदल के दूसरी बन जाती है, दूसरी तीसरी बन जाती है, तीसरी चौथी बन जाती है। तो दुनिया के अंदर जो तगैरात होते हैं वो मादे के अंदर होते हैं, लेकिन ये मादा जो है ये खुद अदम से वजूद में आया, ये नहीं था, खुदा ने पैदा किया और खुदा चाहे तो इसको फना कर दे, इसे ख़त्म कर दे। मादे के हवाले से बतौर ख़ास जो मैं कलाम कर रहा हूँ उसकी एक वजह यह है कि एक जुमला जो है वो बड़ा जब वो बोला जाता है साइंस की ज़बान के अंदर कि मादे को ना फना किया जा सकता है ना पैदा किया जा सकता है, मादे को ना फना किया जा सकता है ना पैदा किया जा सकता है। ये अगर तो मुसलमान बोलता है और उसके पीछे उसका अकीदा सही है और ईमान मौजूद है, फिर तो इसका मतलब ये होगा कि दुनियावी एतबार से जो मादा है इसे दुनिया में कोई बंदा फना नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पे अगर ये टेबल है ये मादे का बना हुआ, यानी ये शीशे का लकड़ी का बना हुआ, इसे हम तोड़ दें, जला दें, पिघला दें, कुछ भी कर दें, ये राख बन जाएगी। तो मादे की एक शक्ल जो है वो तब्दील होके राख बन गई, वो राख जो है वो कोई और सूरत धार लेगी, उससे कुछ और बन जाएगा, यानी तगयुरात होंगे और एक शय से दूसरी शय बन जाएगी। हम किसी शय को राख बना देते हैं तो उसका कुछ हिस्सा जो है वो भाप बन के उड़ जाता है, कुछ हिस्सा जो है वो जर्रात बन के उड़ जाता है, कुछ राख की सूरत में हमारे सामने होता है, तो ये उसके अंदर तगयुरात आ जाते हैं। दो गैसेज होती हैं वो मिलती हैं तो पानी बन जाता है, पानी को हम जो है वो गर्म करते हैं तो भाप बन के उड़ जाता है, लेकिन भाप बन के जब उड़ता है तो वो बादलों की सूरत इख्तियार कर लेता है, बादल जो है वो बरसते हैं तो फिर पानी की सूरत में आ जाते हैं, पानी जो है अगर हम उसको मिसाल के तौर पे फ्रिज में रख देते हैं तो वो बर्फ की सूरत बन जाता है, बर्फ को पिघला के फिर पानी बना लिया जाता है। तो ये सब क्या है, ये सब के सब तगैरात है, इन सब के अंदर मादा बदाते खुद मौजूद रहता है, लेकिन ये सब जो चीजें हैं कि मादा फना नहीं हो सकता और उसको पैदा नहीं किया जा सकता, ये सब चीजें बंदों के एतबार से, ये मखलूक के एतबार से, वरना अल्लाह तबारक व तआला वो खालिक हकीकी है। मादा जो है वो कोई कदीम नहीं है कि हमेशा से है, मादा नहीं था सिर्फ खुदा था, खुदा ने मादे को पैदा किया तो ये वजूद में आया। अब अल्लाह ताला इसको फना करना चाहे तो इसको जस्ट कुन फरमाएगा कि मादूम हो जा, खत्म, कोई कुछ बाकी नहीं रहेगा। तो जो अल्लाह ताला की कुदरत है वो ये है, लिहाजा ये जो जुमला है ना कि मादा ना फना किया जा सकता है ना पैदा किया जा सकता है, इसको अगर कोई बोले तो ये मफहूम जो है वो अपने जहन में जरूर रखे, वरना ये जुमला जो है वो सबसे ज्यादा दहरी इस्तेमाल करते हैं जो खुदा को मानते ही नहीं, जो खुदा के वजूद को नहीं मानते, तो वो मादे को कदीम मानते हैं कि मादा हमेशा से है, हमेशा रहेगा, इसको कोई फना नहीं कर सकता, मादल्ला खुदा को वो मानते ही नहीं और मादे की फना भी नहीं मानते। तो हम इस एतबार से हमारा कोई ईमान नहीं है कि जना मादा ना पैदा किया जा सकता ना फना किया जा सकता है। खालिक अल्लाह है, खालिक कुल्ली शैइन, हर शय को पैदा करने वाला बनाने वाला खुदा है और खुदा जिसे चाहे फना कर दे। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ذل الجلالی والاکرام, कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहा, हर शय फना हो जाएगी सवाए रब की जात के, रब की जात बाकी रहेगी। तो लिहाजा मादे के हवाले से भी जो गुफ्तगू है वो हमेशा इस कॉन्सेप्ट को, ये जो इस्लामी अकीदा है उसको जहन में रख के, बाद लोगों को जो है वो साइंस की जो है वो हवा दरा ज्यादा ही मुजर सेहत साबित हो जाती है तो उनकी जो है वो दिमाग के अंदर कुछ और ही वसों से पैदा होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन हकीकत यही है कि जो सच्चा मुसलमान है वो तो इस बात का तस्वुर भी नहीं कर सकता कि जनाब मादा जो है वो खुद ही पैदा हुआ, खुदा ने उसको नहीं पैदा किया और खुदा उसको फना नहीं कर सकता। ऐसा तस्वुर जो है और ऐसे अल्फाज कभी किसी मुसलमान की न जबान से अदा हो सकते हैं न उसके दिमाग के अंदर आ सकते हैं। अल्लाह ताला खालिक है, उसने मादे को वजूद बख्शा और वो जब चाहे इसको फना कर दे, क्यों, इसलिए कि वो कादिर है, वो कुदरत वाला है और उसकी कुदरत जो है वो हर शय पर है, हर मुमकिन के ऊपर खुदा की कुदरत है। और अल्लाह ताला का जो मामला है वो ये है, अल्लाह ताला फरमाता है वَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ, और जब अल्लाह किसी अम्र का फैसला करता है तो उसे सिर्फ इतना कहता है कुन, हो जा, वो शय हो जाती है। तो अल्लाह ताला का जो मामला है वो उसमें कोई असबाब नहीं है, कोई आलात नहीं है, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور وہ شے ہو جاتی ہے. ہاں خود اللہ تعالیٰ اسباب کو خدمت کا موقع دے تو وہ ایک جدا چیز ہے کہ فرشتے جو ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے امور جو ہے امور مفودہ جو ہے وہ سر انجام دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو تفویض کیے, تو وہ جدا معاملہ ہو جاتا ہے. اچھا اسی طرح وہ المقتدر ہے, عظیم قدرت والا ہے, اور اتنی عظیم قدرت والا کہ حقیقت یہی ہے کہ اس کی قدرت کے سامنے مخلوق کی قدرت کی بات ہی نہیں کی جا سکتی, کوئی تقابل ہی نہیں ہے کہ مخلوق کی ساری قدرتیں وہ سب خدا کی عطا کرتا ہے. بڑے سے بڑا بادشاہ, بڑے سے بڑا جری, کوی, بہادر, شجاع, اس کی ساری قوت, اس کی ساری شوکت, اس کی ہر شے, اس کی قدرت کا ذرہ ذرہ جو ہے وہ تابع ہے خدا کی قدرت کے. اللہ تعالیٰ تو یہاں تک ارشاد فرماتا ہے, فرمایا وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین, فرمایا اور تم کیا چاہو, تم چاہو کیا, نہیں کچھ نہیں, فرمایا تم کیا چاہو مگر وہ جو چاہے سارے جہانوں کا رب, یعنی جو چاہت ہماری ہے وہ بھی خدا کے چاہنے سے ہوتی ہے. خدا کی مشیت ہوتی ہے تو ہمارے اندر چاہت جو ہے وہ کچھ کر سکتی ہے, ورنہ ہمارے اندر خود چاہت بھی پیدا نہ. ہاں پھر اللہ تعالیٰ نے جو بندے کو اختیارات دیے ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے اور اپنی جو ہے وہ اختیار سے وہ اچھائی کرے برائی کرے, وہ ایک سارا جدا معاملہ ہو جاتا ہے, لیکن جو اس کے پیچھے حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ اصل مشیت الہی ہے. اس کے ساتھ ہی دنیا جہان کے اندر چیزوں کا وقوع ہے, اس کی رضا اور خوشنودی جدا چیز ہے, لیکن اس کی مشیت اور چاہت کہ وہ چاہے تو کچھ ہو اور وہ چاہے تو نہ ہو, تو یہ جو ہے یہ ایک جدا معاملہ ہو جاتا ہے.